interview with Divakar Singh at BHU campus on May 2nd, 2018, done by Aheli Chaudhary. The recording begins now. Divakar, just talk a little bit about your personal history, where you came from, and where you
I was born here in Varanasi. और मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ. फिर बेसिकली जब मैं क्लास फर्स्ट में था, सरस्वती विद्या शिशु मंदिर में पढ़ रहा था, और वहाँ से, क्योंकि घर में सबसे बड़ा था, तो मुझे बॉम्बे भेज दिया गया पढ़ने के लिए. वहाँ पे भी अंकल रह रहे थे, और वहाँ मैं पढ़ने गया तो 13 साल का एजुकेशन प्रोक्स वहीं पर हुआ अंकल आंट के साथ. फिर आई फेल्ड, पता नहीं अब वो नहीं पाएगा मुझे लगा.
नहीं हो पाएगा, आप बोलिए ना बाकी क्या हुआ. लेट जस्ट कट दैट पार्ट शॉर्ट एंड लेट्स टॉक अबाउट यू व्हेन यू केम हियर विद पीएचडी एंड जौनपुर का एक्सपीरियंस. हम थोड़ा देर में आप बात बोल लेना, बट टॉक अबाउट हाउ यू केम टू बीएचयू और क्या पढ़ाई शुरू किया.
बीएचयू वो काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था. मतलब मेरा बीएचयू आना, मतलब टू टाइम्स और थ्री टाइम्स फेलियर. ट्वेल्थ में घर वाले पूरी उम्मीद छोड़ चुके थे, और फाइनली ये हुआ क्योंकि पढ़ाना तो है ही, तो डीम्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराना इलाहाबाद. और वहाँ पे वो 4 साल भी इसी तरह बीतते बदमाशी करने में. आई वॉज प्रेसिडेंट देयर, सेकेंड और थर्ड ईयर दोनों मैं प्रेसिडेंट था वहाँ पे बायोटेक में, बायोकेमिस्ट्री इंस्टीट्यूट में बेसिकली. और फिर फोर्थ ईयर आते आते फाइनली मैं दिल्ली गया तैयारी करने. और तैयारी करने जाता हूँ तो जिस कोचिंग में मैं आया रहा पूसा में जाता हूँ, उसमें मुझे 3 दिन बाद निकाल दिया जाता है. वो मुझसे ये कहते हैं कि मैं अपना रिजल्ट नहीं ख़राब करना चाहता. हम 6 बच्चों को पढ़ाते हैं और वो 6 के 6 सेलेक्ट होते हैं, तो मुझसे कहा जाता है कि तुम धूप में जाओ, ये बैग सर पे लेके खड़े हो जाओ. कुछ आसान 4 सवाल वो मुझसे पूछते हैं मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, मुझे नहीं पता होता है. और फिर वो मेरे ईगो पे आ जाती है, मतलब कुछ भी हो, मैं अपने यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट रहा हूँ 2-2 बार, और हाउ दे आर ट्रीटिंग मी. और फिर मैं चला जाता हूँ, टेक अप अ स्मॉल रूम, एक किचन जैसा रूम, और वो पहली बार मैं अपने पॉकेट मनी के पैसे से कोई किताब खरीदता हूँ. इट वॉज टफ, मतलब वो 1 महीने की पढ़ाई मुझे नहीं पता वो कैसी थी. वो अजीब समय था ज़िंदगी में, मैं वैसा नहीं पढ़ पाऊँगा कभी भी. आई क्राइड विथ माई बुक्स, मैं शीशे से बात करता था, और चीज़ें इसी तरह बीतती गई. लेकिन फिर फाइनली जब मैं एग्ज़ाम्स के लिए बैठा, तो 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए बैठा था मैं. तीनों फील्ड में अपने अच्छी थी, मतलब 2 बेसिकली तो बहुत अच्छी थी. एक हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी बायोकेमिस्ट्री के लिए जो टॉप में मानी जाती थी. सेकंड वाज बीएचयू जो एज ए यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी थी. बायोकेमिस्ट्री आई डिडंट न्यू कि वो कैसा होगा, और अलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और तीनों लकीली मैंने क्वालिफाई किया था. जेएनयू, हाँ जेएनयू वाज द फर्स्ट एग्ज़ाम जिसमें बैठा था बायोकेमिस्ट्री के लिए और पब्लिक पॉलिसी के लिए, और दोनों एग्ज़ाम क्लैश कर गए, तो फिर मुझे एक ही एग्ज़ाम देना पड़ा. और फिर मैं लाइफ साइंसेस के लिए अपेयर हुआ, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें. इन 4 एग्ज़ाम्स के बाद फाइनली फिर बीएचयू में एडमिशन होता है. बीएचयू एडमिशन होने के बाद भी वो अलग अजीब सा माहौल ही था. मतलब मेरे साथ के दोस्त रो रहे थे और वो खुश हो रहे थे कि एक ही आवारा था जो सिलेक्ट हो गया कहीं. घर में अजीब सा माहौल था, माई डैड वॉज क्राइंग कि मुझे, मतलब इससे पहले मुझे कभी पता नहीं था कि मैं, घर में लोग इतना ज़्यादा नाउमीद हो चुके हैं मुझसे. कि उस दिन डैड वॉज लाइक कि वो जितने पैसे मांगे उसे भेज देना पार्टी करने के लिए. पहली बार तो उसने कुछ दिया है मुझे खुश होने के लिए. बड़े पिताजी का भी यही था कि चलो अब मैं समाज में चल पाऊँगा लाइक दिस. और मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं इतना लेफ्ट आउट सा था अपने घरों से. खैर इन चीज़ों के अलावा फिर बीएचयू आता हूँ, 3 महीने बाद पता लगता है कि अटेंडेंस शॉर्ट है और मतलब छोड़ना पड़ेगा, फिर से एग्ज़ाम देना होगा. तो वो अगेन एक छोटी सी लड़ाई जो होती है डीन वगैरह के साथ. फाइनली सेटल डाउन होता है, पास होता हूँ पीजी यहाँ से, और दिल्ली निकल जाता हूँ यूपीएससी के प्रिपरेशंस के लिए. और यूपीएससी के प्रिपरेशंस के लिए जाता हूँ, वहाँ पे सीसैट मूवमेंट होता है. नीलोत्पल मृणाल और राजीव वॉज वन नेम, आई डोंट रिमेम्बर, गाय फ्रॉम आम आदमी पार्टी, ये लोग बैठ कर, और देयर वाज आल्सो सीनियर पर्सन, मैं उनका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, जो भाषा आंदोलन से जुड़े रहे, जिन्होंने IIT के एग्जाम्स को हिंदी में करवाया था, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, वो थे, वो जुड़ते हैं, और मैं भी वॉलंटरली उस आंदोलन से जुड़ जाता हूँ, जुड़ता हूँ, फिर वो आंदोलन जिस तरीके से शुरू होता है, जिस तरीके से ख़त्म होता है, उसका ख़त्म होना बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है, मनोज तिवारी आते हैं अचानक, मतलब दो दिन के अंदर सब कुछ चल रहा होता है, एक मास बिल्डअप हो रहा होता है, ये होता है कि हम पार्लियामेंट स्ट्रीट जा रहे हैं घेरने, वहाँ से आते हैं, पुलिस सपोर्ट कर रही होती है, पब्लिक सपोर्ट कर रही होती है, तब इतनी समझ नहीं होती कि ये लड़ाई IAS बनने की है और ये किसकी लड़ाई है, तब तो लड़ाई मतलब ये लगता था कि पहली बार जो लड़ाइयाँ हम किया करते थे ग्रेजुएशन में जिसमें हाथ पैर का यूज़ होता था, उसके अलावा किसी राइट्स को लेकर कैसे लड़ा जाता है गवर्नमेंट से, तब वो चीज़ें दिखाई देती थी, और अचानक मनोज तिवारी का आना, स्टेज पर बैठना, मैं घर आता हूँ खाना खा के जाता हूँ वहाँ पे तो देखता हूँ स्टेज पे कोई नहीं है, लोग बैठे हैं मेरी तरह, सारे जो लोग वॉलंटरली जुड़े थे वो ढूंढ रहे हैं किसी न किसी को, कोई नहीं है वहाँ पर, नीलोत्पल मृणाल नहीं है, सेकंड जो गाय है वो नहीं है, कुछ सीनियर्स बैठे हैं वो कह रहे हैं कि वो लोग आ रहे हैं अभी, फिर र्यूमर आता है कि मनोज तिवारी के साथ एक कोई होटल है डायमंड या समथिंग होटल था वहाँ पे, उसमें बैठ के कमरे में कुछ सेटिंग हो रही है, फिर खबर आती है कि वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हम उस हॉस्पिटल पहुँचते हैं मिलने तो उस हॉस्पिटल में कोई एडमिट नहीं हुआ होता है, और फिर कुछ दिनों बाद एक फ़ोटो आती है जिसमें ICU में दिखाया जाता है कि वो लोग ICU में हैं और सरकार इसे कंसिडर करेगी, उस साल कुछ नहीं होता है, नेक्स्ट ईयर फिर शायद CSAT को क्वालिफाइंग कर दिया जाता है, मैं नहीं जानता कि वो इस वजह से होता है पर मैं डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि ये मूवमेंट चला था यहाँ पर, और वही मैं जब ये मूवमेंट ख़त्म होता है उस गलत तरीके से मैं डिसअपॉइंटेड होता हूँ, घर आता हूँ, मैं सामान पैक करता हूँ और जस्ट नेक्स्ट डे मैं सारी बुक्स पैक करके मैं वाराणसी आ जाता हूँ। थ्रू आउट लाइफ मैंने डिसीजन जब भी लिए हैं मैंने क्विकली ही लिए हैं, कभी बहुत ज़्यादा सोचा नहीं, और इसीलिए बहुत नुकसान और कभी कभी बहुत फ़ायदे में भी रहा। बनारस आता हूँ, बनारस शिफ्ट होता हूँ, यहाँ पर रिसर्च ज्वाइन करता हूँ, फिर वो रिसर्च के दौरान फेलोशिप बहुत अच्छी नहीं मिल रही होती है, काम से बहुत सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ, तो मतलब अलग अलग चीज़ों में थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होने लगता हूँ जिसके थ्रू फिर अलग अलग पब्लिक ग्रुप्स मिलने लगते हैं, क्योंकि वहाँ से एक मूवमेंट से डिसअपॉइंट होकर लौटा रहता हूँ तो बहुत मूवमेंट फ्रेंडली या किसी मूवमेंट को लेके बहुत जुड़ने का मन तो नहीं करता है, खड़े रह के सुनने का मन करता है, उसी बीच लाइब्रेरी का मूवमेंट इन लोग का चल रहा होता है, उसमें लाइब्रेरी के मूवमेंट में मेरी इतनी भूमिका होती है कि मैं रात में 12 बजे जाता हूँ, 12 से 3 बैठ के वहाँ पर सुना करता हूँ, लोगों को कोई एक आध मिल जाता है तो बात करता हूँ, 3-3:30 बजे मैं वहाँ से लौट कर आता हूँ, कोई मुझसे बात करे ना करे, मुझे मतलब बैठ कर केवल ऑब्जर्व करना अच्छा लगता है, और वहाँ पे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी एक मूवमेंट से आ रहा हूँ, एक उसका एक हिस्सा होके जिसको मैंने ख़त्म होते देखा है और कहीं वो यहाँ पर ना हो, और जब भी वैसी चीज़ें होती हैं, जब DM आता है, DM किरण आनंद, तब मैं कहता हूँ मेरी बातें मतलब कोई सुनने वाला नहीं होता है उस समय भी इन सारे लोगों में जो आज AC का हिस्सा है, मतलब मैंने कई बार सलाह दी है कोई नहीं सुनता है, वो सोचते हैं कि कौन है जो सिर्फ रात में आता है और चला जाता है। फिर अचानक एक रात हम लोग चाय पी रहे होते हैं 1 बजे और पूरा लंका खाली हो रहा होता है, खूब सारी पुलिस की गाड़ियाँ आई होती हैं, वो अंदर जाती है और फिर लौट के आती है तो फिर ये लोग गाड़ी में भरकर स्टूडेंट्स को लेकर जा रहे होते हैं, हम और रोशन एक दोस्त है वो खड़ा होते हैं, एक टूटी हुई स्कूटी होती है जिससे पीछा करते हुए फिर मैं इन लोगों के साथ, मतलब वो पूरा खाली होता है, सिर्फ एक आवाज़ प्रियेश शायद चिल्लाता है कि दिवाकर भैया हम लोग को ले जा रहे हैं, आप सबको कॉन्टैक्ट कर दीजिए। तब तक मैं स्वराज अभियान से जुड़ चुका होता हूँ, मैं डेली कॉल करता हूँ प्रोफेसर राकेश सिन्हा, अनुपम, योगेंद्र जी को मैसेज करता हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है आप लोग कुछ करिए, मुझे लगता है कि मतलब ऐसे गिरफ्तार हुआ है सबको कॉल कर देना चाहिए, सब लोग उन लोगों को तुरंत छुड़ा देंगे, ये चीज़ें ऐसी होती होंगी, बट सब कुछ बहुत अलग होता है, मतलब वो गिरफ्तार होकर जाते हैं, मैं फॉलो करते हुए जाता हूँ इस थाने उस थाने, वो कई थानों घुमाते हुए वो लोग उन लोग को कैंटोनमेंट ले जाते हैं, जहाँ मैं देखता हूँ कि ये वो बच्चे जो पूरे जोश के साथ नारा लगा रहे थे कि पूरा बनारस हिल रहा था उस समय, ऐसा नारा लगा रहे थे, जब ये वहाँ पहुँचते जहाँ इनको सुनने वाला कोई नहीं होता है तो पुलिस गेट खोलती और कहती कि उतरो, ये सब एकदम चुपचाप सर झुकाए नीचे उतर रहे होते हैं, मतलब मैंने दोनों समय पे मैंने दोनों चीज़ों को देखा उस पर्टिकुलर मोमेंट में, एक समय कैसे वो स्टूडेंट जब उनको लगता है कि एक सोसाइटी है जो उन्हें देख रही है, वो उस समय कैसे होते हैं, और जिस समय उन्हें ये लगता है कि अब वो वहाँ आ गए हैं जहाँ पे सिर्फ स्टेट है, जहाँ पे सिर्फ पुलिस है, तो उस समय अचानक कैसे वो गिव अप स्टेट में आ जाते हैं, फिर लौट के आते हैं, सबको कॉल करना, कोऑर्डिनेट करना, मीडिया जो इक्का दुक्का लोगों को मैं जानता हूँ उनसे बात करता हूँ, ये सब होता है। और फिर उसी के बाद पहली PhD ज्वाइन करता हूँ, ज्वाइन करते करने के बाद चल रहा होता है, सीजर अटैक आता है मुझे, फिर उससे रिकवर करता रहता हूँ, तब तक लंका चाय ही पीने रात की जो आदत होती है उसमें आता हूँ, तो पाता हूँ कि कुछ डेली वेज लेबर्स हैं BHU के, वो बैठे हुए हैं। खैर मैं पहले से नहीं जानता था कि देर आर समथिंग, मतलब कोई डेली वेज लेबर्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन एक रामाशीष नाम का आदमी जो हम लोगों को पानी पिलाया करता था एग्जाम्स के समय में MSc में, वो दिखता था, उन्हें देख के मैं रुकता हूँ कि चाचा यहाँ कैसे, तो बताते हैं कि अरे भैया ऐसा ऐसा हुआ है, हम लोग 30-30, 32-32 साल यहाँ काम किया, हम लोगों को निकाल दिया गया है। तो बैकलैश में जब ये दो मोमेंट होता है, इसमें हम देखते हैं कि गिरफ्तार हो रहे हैं, और फिर ये एक फीलिंग कि हम जहाँ पे गए थे कैंप में पालमपुर स्वराज अभियान के, जहाँ पर ये तमाम बातें बताई गई कि मजदूरों के साथ जब ये होता है तो आपको खड़ा होना चाहिए, और हम लड़ते हैं, ऐसी ऐसी जगह पर लोग लड़ रहे हैं, मेधा से लेकर पूरा ITI का जो पूरा वो फेज रहा है उसके बारे में ये सारी स्टोरीज हम लोग को वहाँ सुनाई जाती है। वहाँ पे हिमांशु कुमार से इंटरेक्ट होना, प्रोफेसर आनंद कुमार से इंटरेक्ट होना, राजीव गोदारा और ऐसे तमाम लोग जो इन संघर्षों में रहे, मानसी थी जो एनवायरमेंट को लेकर वहाँ काम कर रही थी, इनसे मिलना वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अचानक मैं रुकता हूँ, उस पेपर को पढ़ता हूँ, मुझे लगता है यार सब कुछ तो ठीक है, जो ये मांग रहे हैं वो भी लिखा हुआ है पेपर में, और तो वो तो आसानी से कल हो जाएगा। मैं बैठता हूँ वहाँ पर, वो पहली रात बीतती है और उस तरह 171 रातें बीत जाती हैं। वो 6 महीने का अप्रॉक्स जो पूरा दौर है वो मुझे फिर मेरी लाइफ को पूरा चेंज करता है। उसी बीच में एब्सेंट होने के चलते रिसर्च में पहली PhD ड्रॉप होती है, लेकिन वो काफ़ी, मतलब मैं 7 से 8 किलो वेट लूज़ कर जाता हूँ उस पूरे मूवमेंट में, इतनी दौड़ भाग मैं होश में नहीं रहता हूँ। मतलब मेरे दोस्त जो मुझे बताते हैं वो ये बताते हैं कि तुम रात में जब सोए रहते थे तब भी तुम हाथ पैर फेंक के ये बातें किया करते थे कि वहाँ जाना है, वहाँ सभा करनी है, उन लोगों को जोड़ना है। मतलब मैं पूरा ऑब्सेशन में होता हूँ, या पता नहीं वो कौन सा मेंटल स्टेट होता है जिसमें मैं उस 5 महीने, शुरू के 4 महीने तक तो मैं पागल की स्थिति में था, 4 महीने बाद जब मुझसे कुछ सीनियर्स जुड़ते हैं, SP राय, धनंजय त्रिपाठी, जब ये लोग मिलते हैं मुझसे, मुकेश, रवि भाई, एकता, ये लोग मिलते हैं तो ये मुझसे बताते हैं कि जो तुम कर रहे हो ठीक है, यहाँ पे बुरा हुआ है, लेकिन इससे भी कहीं बुरा, बहुत बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। वो उन चीज़ों के बारे में बताते हैं, वो लड़ाइयाँ मुझे बताते हैं जिसमें कुछ नहीं हासिल होता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तब तक तो मुझे ये लगता है कि एक मेरी ही गलती है कि 54 जो लेबर्स हैं ये शायद अपना काम करते कुछ ना कुछ जाके माफ़ी मांग के, मैंने इन्हें माफ़ी मांगने से रोक लिया कि तुम्हारे अधिकार की बात है तो माफ़ी मत मांगना। और उसके चलते एक हफ्ते से आज ये 4 महीना होने जा रहा है और पता नहीं कितने दिन जाएगा। तब धीरे धीरे सबकी बातों से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं इसे अब लीगली लड़ेंगे, तो वो भी ट्रायल चलता है। मैं यहाँ पे CPIM का एक दफ्तर है जहाँ पर आज से 20 साल पहले जब यहाँ पर ट्रेड यूनियन बनने की बात हुई थी तो उसके रजिस्टर्स रखे होते हैं, वो जाता हूँ, खोजता हूँ पूरा, वो निकाल कर आता हूँ, उसके बेस पे प्रोसीडिंग्स तैयार करता हूँ मीटिंग्स के, कि आज पहली मीटिंग हुई, इतने लेबर्स थे, इतने लोगों ने साइन किया, वो भी काम आधा होता है फिर रुक जाता है, एक्सपीरियंस की फिर से कमी होती है मेरे पास। और इसी बीच अप्रोच भी किसको करना है ये भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि इंटक आ चुका होता है, उसके लीडर भी फ़ोटो खिंचा कर वहाँ से चले जाते हैं, वो आते हैं, फिर CPIM आता है, वो कहता है कि हमारा झंडा लगेगा तो हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, और तब वो मना कर देते हैं। अगर मैं शायद थोड़ा सा और समझदार होता तो मैं बिल्कुल हाँ कहता, लेकिन तब पहली बार जब आप इन चीज़ों में होते हो तो मुझे लगता है कि शायद इतनी एनर्जी होती है और वो पूरा होता है कि दुनिया सब कुछ बदल के रख देना है, बस सुबह होगी और ये 54 मजदूरों का परमानेंट हो जाएंगे ये, और तुम खुशी खुशी घर जाके सो जाओगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो 54 लोग और वो पूरा स्पेस एक प्रोटेस्ट का स्क्वायर बन गया। जो आता वो ये सोच के आता कि 54 से 60 लोग वहाँ बैठे होंगे, हमको 8-10 लोगों को चलना, 70 लोगों का एक प्रोटेस्ट मार्कअप हो जाएगा, और हर पार्टी ने उसको बकायदा यूज़ किया। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो ये कहेगी कि मैं नहीं गया था, मतलब ऐसा कोई पोर्टल नहीं है जहाँ पर मैं नहीं गया। प्रशांत भूषण तक भी ये मैटर गया था, प्रशांत भूषण ने 2 मैटर्स उनके पास एक साथ गए थे मनीष के थ्रू, लेबर्स का इशू और स्टूडेंट्स का लाइब्रेरी का इशू, और ये मेरे लिए काफ़ी अजीब था जब प्रशांत ने लेबर्स के इशू को सुनना पसंद ही नहीं किया और उन्होंने स्टूडेंट्स का इशू सुना और उसको लेकर वो आगे भी गए. हो सकता है मतलब इम्पोर्टेंट उनको जो लगा हो वो उन्होंने चुना, पर मेरे लिए मेरी लड़ाई थी इसलिए मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मजदूरों की बात लग रही थी. और फिर मुझसे बताया गया कि देश भर में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे मजदूर हैं, अलग अलग कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज़ में ऐसे मज़दूर हैं और इसलिए इकोनॉमिकली ये वाइबल नहीं है. इस तरह की तमाम बड़े बड़े लेवल की बातें जो सबको समझ में आने के बाद भी आज भी उन लोगों से मिलता हूँ. अभी कल जो प्रोटेस्ट 1 मई पे हम मार्कअप कर रहे थे तो भी फिर उन्हीं के साथ था मैं, तो फिर वो लगता है लेकिन ये तो आज भी वहीं खड़े हैं. 2 साल हो गया वो आज भी प्लेस अपनी जगह पर नहीं लौट पाए हैं, उन्हें निकाल दिया गया. कई लोगों के मतलब बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं. ये इतना मतलब ये 54 लोग एक फैमिली की तरह इसलिए हो गए कि कुछ ऐसे गरीब लोग भी थे जिनकी बेटी का गौना होना होता था तो उस धरने के दौरान ही, तो वो रोते थे कि हम इतने महीने से काम पे नहीं गए हैं, मेरी बेटी कैसे जाएगी. तो उस समय 100-100 रुपये लोगों से कलेक्ट करके देना, मेरे पास जो कुछ बचत होती थी फेलोशिप की 3,000-4,000 वो देना, वो 5,000 का करके कुछ गौना लड़की का उनके होना. किसी को स्ट्रोक्स आते हैं मेरी तरह और क्योंकि मैं खुद मुझे स्ट्रोक्स आए हुए हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि दवाइयाँ कितनी ज़रूरी होती हैं, उनकी दवाइयाँ दिलाना. कोई बीमार अचानक पड़ गया, किसी के घर में किसी की माँ बीमार पड़ गई, उसके पैसे इकट्ठा करना, तो खुद के लिए भी कुछ बचता नहीं था. और फिर वो डिप्रेशन भी घुसता गया, वो PhD छूटी, दोबारा PhD के लिए अप्लाई किए, IIT बायोमेडिकल में एडमिशन लिया, फिर वो ड्रॉप किया, फिर फाइनली बायोकेमिकल में एडमिशन लिया. तब तक रेडी पटरी का आंदोलन हुआ जिसमें फिर गिरफ्तारी होती है, वहाँ से लौट के छूट के आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट जा चुकी होती है. गाइड बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, कहते हैं मतलब करनी है लेकिन इस तरीके से मत करो, थोड़ा बच के रहो और इस तरीके की बातें. इस समय सोसाइटी से पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दोनों आना शुरू हो जाता है कि तुम मजदूरों के लिए लड़े वो बाहर चले गए, तुम जिन स्टूडेंट्स के लिए लड़ते थे वो गिरफ्तार हो गए, तुम जिन रेडी पटरी वालों के लिए लड़ रहे हो उनको हटा दिया जाता है.
ये सोसाइटी कौन है?
जहाँ पे भी है, जो इससे पहले जहाँ हम जिया करते थे, जो बहुत कंफर्टेबल प्लेस था, जहाँ हम एक रिसर्च स्कॉलर थे जिसको एक अच्छी फेलोशिप मिलती है, जहाँ हम चाय की दुकानों पे समय दिया करते थे, कभी अपने कभी साथ के लोगों के चाय का पेमेंट किया करते थे, जहाँ हम पार्टीज किया करते थे, जहाँ हम थोड़े पढ़े लिखे तो थे, थोड़ी सोशली अवेयर तो थे बिल्कुल हम, लेकिन हम सोशल एक्टिविस्ट नहीं थे शायद. मतलब एक वो बारीक सी लाइन जिसमें हम बातें तो करते थे कि एक अच्छा देश हो, कैसा देश हो, कैसा आइडिया हो, कितना बदलाव होना चाहिए, सब खुश रहें तो कैसा हो, और थोड़ा बहुत लड़ रहे थे मतलब कि जातियाँ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इन छोटे छोटे आइडियाज से. तो वो सोसाइटी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और उस सोसाइटी को जो इन चीज़ों को ही गलत मानता था उसकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो कभी इंटरेक्ट हुआ ही नहीं उस तरीके से. वो जो सो कॉल्ड लिबरल्स थे जो मानते थे कि समाज अच्छा होना चाहिए, उनकी बात कर रहा हूँ कि आप गए तो वो उनके साथ खराब हो गया, कुछ नहीं होना है क्यों करते हो. फिर धीरे धीरे मतलब मुझे वो कन्विंस भी कर ले गए कुछ नहीं होना है तो क्यों करते हो, बट उसी ठीक समय पे एक घड़ा मुझे ये भी कन्विंस करता रहा कि कुछ तो करना है, खाली बैठने से अच्छा तो करते रहो. और इन्हीं दोनों के बीच करते गए, यूनिवर्सिटी के साथ फिर जुड़ाव, मतलब यूनिवर्सिटी के मूवमेंट्स के साथ जो जुड़ाव होता है, वो लाइब्रेरी के समय से जाता हूँ तो वो टेस्ट तो रहता ही है, साथ में धीरे धीरे आप भी क्लियर हो जाते हो कि पूरी यूनिवर्सिटी में ऐसे कौन से लोग हैं जो ऐसे इश्यूज को उठाते हैं जिस पे मतलब आप सब लोग एक कंसेंट रखते हो, तो वो एक चेन अपने आप बनने लगती है. वो बनी, फिर जॉइंट एक्शन कमेटी का एक फॉर्मेशन होता है. जॉइंट एक्शन कमेटी भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से फॉर्म होती है, सब जुड़ के बनते हैं. उसमें यूथ फॉर स्वराज से मैं अकेला ही होता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन से भी और रिप्रेजेंटेशन भी मैं भी जुड़ता हूँ. फिर छोटे छोटे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर अलग अलग इश्यूज़ को एड्रेस करना, उसी बीच कर्मचारियों के इश्यूज़ को, फिर रेडी पटरी की लड़ाई को लड़ते रहना, ये सारे काम चलते रहते हैं. उसी में फिर कंप्लेंट होती है MHRD में मेरी PhD के एडमिशन क्राइटेरिया को लेकर, कुछ उसमें इश्यूज़ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं डिपार्टमेंटल गलती के चलते, मुझे इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि अगर मैं फिर कंप्लेंट करता हूँ तो वो पूरा साल मेरा केस लड़ने में जाएगा, 2 साल बिना फेलोशिप के सस्टेन करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा. शादी हो चुकी है, मतलब होनी थी मेरी फरवरी में.
दिस इज व्हिच ईयर?
2016 लेबर्स पूरा मूवमेंट, जिसमें हम 21 दिसंबर को गिरफ्तार होते हैं, मोदी जी 22 को आने वाले होते हैं, और उसके बाद 2017 में हम मतलब मेरी शादी होती है फरवरी में, 23 दिसंबर को 22 या 23 को रिहा होके आते हैं और फिर वही एंगेजमेंट और शादी होती है फेब में। और इसके बाद फिर वो प्रेशर अलग मतलब चलता है घर में, कोई किसी से कहता नहीं है। मेरे और प्रज्ञा के बीच में भी ये समझदारी होती है कि ये काम है जो मैंने चुना है और मैं मतलब आपको शायद घर चलाना हो कमा के और मुझे इस फील्ड में रहना है, पर वो सारी बातें होने के बावजूद चीज़ें वैसी होती नहीं जैसा आप सोचते हो। मतलब घर आने के बाद वो एक अलग पोजीशन है जो उसके लिए बनी हुई है, सोसाइटी ने एक वॉइड बना रखा है जहाँ उसको फिट ही होना है, कितना भी चाहने और आपके नहीं चाहने से कुछ बदलता नहीं है। बट फिर ये कंटिन्यू होता है तो वो प्रेशर पड़ता है तो फिर मैं छोड़ता हूँ वो केस करने का फैसला और फिर से एंट्रेंस की तैयारी करता हूँ, फिर एंट्रेंस क्लियर करता हूँ और फिर 2017 की दिसंबर 27 में मैं नया सेशन शुरू होता है जिसका फर्स्ट सेमेस्टर अभी चल रहा है मेरी चौथी PhD का, जिसका एग्ज़ाम मैं अभी दे रहा हूँ। और एक मूवमेंट जिसका जिक्र मतलब वुमेंस का जो मूवमेंट होता है वो स्टूडेंट अनरेस्ट, मतलब हम लोग जब बात करते हैं तो विष्णु भैया अक्सर कहते हैं कि वो मूवमेंट उसे मत कहो, उसे स्टूडेंट अनरेस्ट कहो, और काफ़ी सोचने के बाद लगता है कि वो स्टूडेंट अनरेस्ट ही था। मूवमेंट उससे पहले चल रहा था, मूवमेंट उससे बाद भी चल रहा है, जिसमें उन इशूज़ को लेकर जेंडर इक्वलिटी के इशूज़ को लेकर बार बार पर्चों से, सेमिनार से, चाय की डिबेट से हम उनके बीच जाने की कोशिश करते हैं आपस में वो स्थापित करने की। तो मूवमेंट उससे पहले चल रहा था, मूवमेंट उसके बाद चल रहा है। वो स्टूडेंट अनरेस्ट था जो स्पार्कअप हुआ एक इंसिडेंट के चलते। मेरे कमरे में हम चार हो चुके थे यूथ फॉर स्वराज में, अब हम चार लोग हो चुके थे और हम चार लोग बैठ के मीटिंग कर रहे थे मेरे फ्लैट पर कि हम कैसे ऑर्गेनाइजेशन को लेके बढ़ेंगे और ऐसे तमाम जवाब जो हमें बाहर देने थे कि तुम कैसे NSUI से अलग हो, तुम कैसे लेफ्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो, तुम्हारे पास ऐसा क्या अलग है, तुम भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को लेके फॉलो करते हो, कि हम कैसे इस पर बात करेंगे और वाकई में हम कैसे अलग हैं इस पर बात ही कर रहे थे कि मेरा छोटे वाले भाई का फ़ोन आता है कि भारत कला भवन के चौराहे के पास एक लड़की के साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी की है और ये गार्ड उल्टा उनसे बदतमीजी कर रहा है। तो मैं उसे कहता हूँ ठीक है तुम लोग देख लो, तो हम अभी कुछ काम कर रहे हैं। फिर उसका आधे घंटे में कॉल आता है कि आप आ रहे हैं क्योंकि हम बात करेंगे तो हमसे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, हम बात नहीं कर पाएंगे। और हम पहुँचते हैं और लकीली मतलब पाठशाला स्टूडेंट का एक जॉइंट एक्शन कमेटी का एक पाठशाला चलता है स्टडी सर्कल, जिसमें हम लोग जेंडर इश्यूज को लेके पैट्रियार्की अनलर्निंग पैट्रियार्की को लेके एक पूरा सेशन रन किया होता है 3 घंटे का और काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब विष्णु भैया, पंकज और रविशेखर और इस तरह तमाम लोग, मतलब जो सब लोग जुड़ते हैं वो काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है उस दिन। मतलब खुद के अंदर के भी कितने ढांचे टूटते हैं उस 2 घंटे के सेशन के बाद वो अलग ही होता है। और उस दिन वो पूरा का पूरा गुस्सा वो उन गार्ड्स पे निकल जाता है जो वहाँ खड़े होते हैं, जो ये कहते हैं कि तुमको समय से चले जाना चाहिए था। वो पूरा गुस्सा निकलता है उन पर, उन्हें डांटता हूँ, प्रॉक्टर्स आते हैं, उनसे बहस होती है कि यहाँ खड़े होकर आप लोग तमाशा मत करवाइए। और तब तक दरोगा जी की गाड़ी आती है वहाँ से, SO साहब कि चलो चलो हटो यहाँ से। तो वो बहुत लाउड होकर मैं बोलता हूँ कि ये मेरी यूनिवर्सिटी भी है अब और मेरा इशू भी है, अब मैं बात कर रहा हूँ, आपको जहाँ जाना है आप जाइए। ब्रिजेश सिंह और समथिंग उनका नाम होता है, वो उस बार पहली बार मेरा नाम पूछते हैं दिवाकर, जिसका खामियाजा वो मुझे पता नहीं अब कब तक भुगतना है क्योंकि FIR में फिर वो वही नाम उनको याद भी रहता है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। वो लड़के बहस होता है, फिर आयुषी वगैरह लड़कियाँ होती हैं जिनसे मैं कहता हूँ कि बेटा जो भी हो यू जस्ट लेट मी नो, कि कुछ भी होगा हम लोग हैं। और फिर अचानक रात में खबर आती है कि लड़कियों ने हॉस्टल में बवाल कर दिया है, तो ये भी पता लगता है कि हर बार ऐसा बवाल होता है जो ख़त्म हो जाता है। फिर कांस्टेंट कन्वर्सेशन होती है, तो मेरी धनंजय से बात होती है, धनंजय कहता है यार एक रात में ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है, मतलब ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिस पर बात करने की ज़रूरत है, हम सोने जा रहे हैं, आपको जो करना है करिए, ठीक है, ज़रूरत होगी तो हमें बुला लीजिएगा। और हम उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं लेकिन क्योंकि मतलब उनके पॉलिटिकल लीडरशिप और उनके तरीके पे मैं कभी आज तक सवाल नहीं खड़ा कर पाया हूँ, क्योंकि उनका जो व्यवहारिक लेवल है काम करने का वो बहुत ऑर्गेनिक रहा है, उन्होंने इसी के थ्रू सीखा इसी समाज में रहकर चीज़ों को और वो बहुत ज़्यादा बेहतर आर्टिकुलेट करते हैं। बट समहाउ ये बात होती है रात में, फिर कुछ लड़कियों से बात होती है मेरी, मैं उनसे बताता हूँ कि ये लेटर लिखिए। और सुबह हम 5 बजे जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि शायद हम लेट करेंगे तो एग्जाम्स है, धूप हो जाएगी, तब बार बार लगता है कि लड़कियां पता नहीं कितनी देर टिकेंगी नहीं टिकेंगी, वो चली जाएंगी। फिर अपने ग्रुप में भी बात होती है, वो व्हाट्सएप मैसेजेस आज भी जब मैं पढ़ता हूँ तो वो पूरा कन्वर्सेशन मुझे याद आता है। और फिर वो तैयार होती हैं, ठीक है भी हम लोग सुबह सुबह 6 बजे जब मैं फ़ोन करता हूँ तो ये होता है कि भैया सब सो ही रहे हैं, अभी कोई उठा ही नहीं है। प्रियेश, दीपक, रजत ये लोग चल चुके होते हैं, पेट्रोल पंप तक पहुँच चुके होते हैं उस गर्ल्स हॉस्टल के सामने त्रिवेणी, और ये फ़ोन कर रहे हैं लगातार साथ के स्टूडेंट्स को, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। फिर हम फ़ोन करते हैं, कुछ बात है कि हाँ भैया 2-3 लोग उठे हैं, वो लोग अभी उठा रहे हैं लोगों को चल के। हम कहे ठीक है हम आ रहे हैं, हम ब्रश करते हैं, स्कूटी लेके अपने निकलते हैं वहाँ से और निकलते हैं। और फिर ये कहते हैं भैया आप 10-15 लोग उठ गए हैं, वो लोग शायद निकलेंगे। और वो 15 से 50 होते हैं, कब वो जब गेट खोल के निकलता है वो लोग वहाँ से चल चुके होते हैं। जब मैं आता हूँ तो 70-80 की भीड़ होती है, और वो अनरेस्ट मतलब वो सिर्फ गुस्सा नहीं होता है, वो मुझे लगता है पहली बार वो एक्सप्रेशन भी होता है, क्योंकि वो पहली बार फ्रीली इतना बड़ा मास अपने मन के कपड़ों में जिसमें वो कंफर्टेबल फील करता है वो निकलता है। और पहली बार जिसने अब तक ये देखा है कि लड़कों को निकलते हुए टीवियों में हर जगह कैसे वो जब आंदोलन होता है, जब एक भीड़ निकलती है तो वो सामने पड़ी हर चीज़ को फेंक देते हैं, हटा देते हैं, तो कुछ उनमें से बैरिकेडिंग गिरा रही होती हैं, कुछ उसमें से बैरिकेडिंग हटा रही होती हैं, कुछ समय नारे लगा रही होती हैं। नारे भी बहुत मतलब जैसे जो 2-3 लीडरशिप आती है उसमें 2-3 लड़कियों को जिनको मैं पहले से जानता हूँ, एकता को जो ABP से थी, तो वो काफ़ी सेफ्टी वॉल्व के नारे लग रहे होते हैं। मुझे याद है चीफ प्रॉक्टर माफ़ी मांगो, चीफ प्रॉक्टर माफ़ी मांगो, इस तरीके के नारे लग रहे होते हैं। और तब मैं बार बार कहता हूँ कि रजिस्ट्रार से कहो माफ़ी मांगो, वाइस चांसलर से कहो माफ़ी मांगो, लेकिन वो थोड़ा सा दरकिनार करती है, क्योंकि मतलब इसमें कोई शक नहीं कि ABP का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटेड रहता था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और वो उसका सेफ्टी वॉल्व का काम करता आया है, क्योंकि एकता ही लीडरशिप उस समय ले रही थी। लीडरशिप मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि पॉलिटिकली वही अलग अलग मंचों पर बोल रही थी, तो उस समय बोलने वाली वही थी। फिर पूरी टीम धीरे धीरे निकलती है, फिर वो नारे मैं भी लगाना शुरू करता हूँ, शुरू के 5-6 मिनट मैं जाता हूँ लाइव और मेरा फ़ोन ऑफ होता है, फिर मैं नारे लगवाना शुरू करता हूँ। तब कुछ नारे निकलते हैं कि यूनिवर्सिटी हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, और वाइस चांसलर माफ़ी मांगो, बहुत मुश्किल होता है। खैर वो नहीं लगते हैं, मतलब वो लड़कियों को लगता है कि नहीं 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 कुछ गुनाह हो जाएगा हमसे, और इससे पहले क्योंकि हम ये नारे लगा चुके होते हैं तो हमें गुनाह तो नहीं लगता, लेकिन उनको गुनाह लगने लगता है। तो वो धीरे धीरे चलता रहता है, भीड़ बढ़ती जाती है, लोग आते जाते हैं। 60% के लिए तो कौतूहल का विषय होता है कि अचानक इतने लोग जो लाइव गए थे, ये लड़कियाँ करके आ रही हैं शॉर्ट्स में यहाँ बैठ के, तो एक पूरा घेराव सा बनता है। विष्णु भैया तब तक आ चुके होते हैं वहाँ से, वो भी मतलब और भी कुछ सीनियर्स आ चुके होते हैं, धनंजय वहाँ से चल चुके होते हैं, ये सारी बातें हो रही होती हैं। अलग अलग लोगों के फ़ोन आना शुरू होते हैं, वो दरोगा आ जाता है कि दिवाकर तुम ये सब क्या करवा रहे हो, मैं उससे बार बार कहता हूँ कि मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये खुद आई हुई हैं। 9:30-10 बजे के खिलाफ धूप होती है काफ़ी ज़्यादा, और मुझे लगता है कि अभी जो चीखने की एनर्जी है ख़त्म होने वाली है, और ये लोग अब थक गए हैं, अब इन्हें रोक देना चाहिए। मैं रोकता हूँ, बात करता हूँ, कहता हूँ कि बेटा अब ख़त्म करते हैं इसको हम लोग, और हम सोच रहे हैं कि जो प्ले कार्ड्स बने हैं इसको लेकर चलते हैं यूनिवर्सिटी का, एक चक्कर काटते हैं सारे गर्ल्स हॉस्टल का, और ले जाके VC ऑफिस के बाहर हम इसको डंप कर देंगे, हम VC को देने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रोटेस्ट हम इसी तरह मार्कअप करेंगे, क्योंकि वो सुनते तो है नहीं किसी बात पे। तो क्योंकि कोई कलेक्टिव लीडरशिप नहीं होती है तो ये ऊहापोह बना रहता है कि ऐसा करें कि ना करें, करें कि ना करें, और इसमें जब होता नहीं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब तक बैठे ही रहो, जब तक कुछ समझ में नहीं आता है तो बैठे रहो, तो वो बैठे रहते हैं। जब वो बैठे रहते हैं और जब 1 बज जाता है तब तो लगता है कि अब बैठे हैं तो फिर बैठे रह गए, तो फिर अब हम लोग मोबिलाइजेशन के थ्रू बढ़ते हैं, मोबिलाइजेशन होने लगता है इसी तरह, मतलब लोगों को बुला बुला के लाना। शाम होती है, शाम में मतलब लीडरशिप अभी तक किसी के पास है नहीं, शाम में ABP के कुछ लोग मुझसे आके कहते हैं कि दिवाकर भैया अपने साथ के लोगों से कहिए कि अब वो जाएं, कुछ लड़कियां जो साथ की उनसे कहिए कि वो लोग बात रखें, वरना अगर ये जो लोग अभी इसमें बोल रहे हैं ये बोलते रह गए तो कुछ होना नहीं है, कुछ मिलना नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस केस में स्वाति है स्टूडेंट फॉर चेंज से, मैं उससे कहता हूँ कि आप आगे जाके लीड लो, अब आप आर्टिकुलेट करो चीज़ों को। हम मिनेशी से, शिवांगी से कहते हैं कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी के स्टूडेंट थे, कि आप लीड लो। बीसीएम के स्टूडेंट्स जो लड़कियां होती हैं उनसे कहता हूँ कि आप लीड लो, क्योंकि हम लड़के थे और हमने ये तय कर लिया था बहुत पहले कि लीडर्स यही रहेंगी, सपोर्ट हम देंगे किसी भी मूवमेंट में, मतलब इस पूरे मूवमेंट में लड़के कहीं घुसेंगे नहीं, हम बाहर ही रहेंगे और सपोर्ट करेंगे। कई बार गालियाँ सुनते हैं, मतलब जो लड़कियाँ मतलब 10-12 लोगों को लेकर जो बोलने वाली लड़कियाँ थी जो मूवमेंट्स में रही उनको छोड़कर तो कोई और जानता भी नहीं है, तो लेकिन एनर्जी पे किसी के कोई सवाल नहीं है। वो गुस्सा, वो तरीका, वो सेलिब्रेशन भी एक समय हो रहा था उस पर्टिकुलर मूवमेंट का कि वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, मतलब वो पूरा गेट छेक के बैठे हुए हैं जैसा उन्होंने देखा है लोगों को छेक कर बैठते हुए, और हम लोग को कई बार तुम क्या कर रहे हो, तुम पीछे हटो, तुम लड़के पीछे हटो, तो ये सब चल रहा था उसी बीच में। हम लोग सुनते जा रहे थे, निगले करते जा रहे थे, कुछ लोग इसको बुरा भी मान रहे थे कि तुम हमें कैसे बोल रही हो, हम कभी कुछ किए हैं, ये सब कुछ चल रहा था। और बार बार इसको प्लान्ड, अब हम सुनते हैं कि प्लान्ड मूवमेंट था, लेकिन अगर आप मतलब कोई भी उस पूरे मूवमेंट को देखेगा बैठकर उसके वीडियोस को, तो वो देखेगा कि प्लान्ड मूवमेंट कभी इतने वेग नहीं होते, मतलब उसकी कोई दिशा नहीं थी, वो अमीबा की तरह कभी भी किसी भी तरफ वो शेप कर ले रहा था, किसी तरफ उसके पैर नहीं, कोई लीड लेने लग रहा था, ये चीज़ चलती गई। फाइन आर्ट्स वालों का फिर उन्होंने रात में कार्टून वगैरह पोस्ट करना, कुछ हम लोगों ने फिर पूरा खाली था जब भीड़ थी, तो पहले हम ब्लैक कलर के वो खरीद के लाए, पोस्टर्स और प्ले कार्ड्स और वाइट चॉक दिया, तो उस पर लिखना लोगों ने शुरू किया कि मैसेज जाए क्या हो रहा है, ये चीज़ें बढ़ती गई, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आते गए। फिर तो वो एक एक इंस्टेंट अगर डिस्क्राइब करने निकलेंगे तो वो बहुत लंबा है, मुझे लगता है कि वो पूरा वो 3 दिन के हर एक इंस्टेंस है जिसमें मतलब हम लोग का चाय पीने जाने में भी ये लगता था कि कुछ छूट ना जाए, वहाँ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये सब कुछ है। फाइनली मुझे लगता है हम स्किप करते हुए लास्ट उस पर्टिकुलर मूवमेंट में चलते हैं जब लाठी चार्ज होने वाला होता है। लाठी चार्ज से कुछ पहले हमें पता लग जाता है कि प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, और फिर मुझे याद आता है लेबर्स का वो स्ट्राइक जिसमें प्राइम मिनिस्टर आने वाले होते हैं, वो रेडी पटरी का स्ट्राइक जिसमें प्राइम मिनिस्टर आने वाले होते हैं और उनको सफाई चाहिए, तो मैं जानता हूँ कि अब वो हटाएंगे, किसी भी तरीके से हटाएंगे, कुछ नहीं हो सकता, वो मारेंगे। मैं लोगों से कहता हूँ, एक चीज़ जो बार बार बल दे रही होती है कि लेडीज़ पुलिस नहीं है, कहीं पर नहीं है, और ये पुलिस नहीं मारेगी, जेंट्स पुलिस नहीं मारेगी। हम उनसे कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं तो आप लोग बस यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाइए, वो फिर भी नहीं मानते हैं, वो पूरी एक रात उससे पहले सड़क पर बिता चुके होते हैं अपने मन से, वो चाय पी चुके होते हैं, वो तमाम कविता जो उसके बाद हम पढ़े कि हमारा भी चांद देखने को मन करता है, चाय पीने को लंका के रात में 2 बजे मन करता है, वो सब कुछ उस समय सच होता दिख रहा था, वो सारे काम कर रहे थे। मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि 12-12 लड़कियों का, 14-14 लड़कियों का, लड़कों का ग्रुप ऐसे बैठा हुआ है अभी चौराहे पे और मस्त बैठ के सब चाय पी रहे हैं। काफ़ी शिफ्टिंग था, मतलब एक समय पे 80-100 लोग बैठ बसते थे और एक समय पे वो 700-800 हो जाते थे, मतलब वो बहुत स्मार्टली जाते थे सब खाना खाने, खा के फिर आ जाते थे, और कई चीज़ें कैटलिस्ट का काम करती रही, कुछ लोगों का पीछे लड़ाई करना, कुछ लोगों का उनकी लड़कियों के विरोध में नारे लगाना, वार्डन्स का गैर जिम्मेदारी भरा बयान देना, उल्टे कमेंट्स पास करना, मतलब ये चीज़ कैटलिस्ट का काम करती रही जो उस गुस्से को बढ़ाती रही। लड़कियों का पीछे MMV की बाउंड्री से कूद कर आना, वो पहली जीत मूवमेंट के लिए, मतलब उस अनरेस्ट में। सेकेंड चीज़, जब हम लोग गेट खुलवाने की बात कर रहे थे और अंदर बाहर हम 4 से 8 लोग होते थे, हम उनसे बस ये कहते कि हम बाहर हैं तो बाहर आओ, तब उनका जिस फोर्स के साथ उस गेट को ढकेलना होता था वो 80 से 100 लोगों का, और वो बेसिकली मैं उसको गेट का टूटना कहता हूँ, वो उस समय कर्फ्यू टाइमिंग ख़त्म हो चुकी थी, ये हम श्योर थे, और वो अनरेस्ट सक्सेसफुल हो चुका था वो अपनी बात कहने में, जब उन्होंने वो गेट तोड़ दिया था। तो वो निकले, हम लोग तालियां बजा के स्वागत करते थे, वो सब आते थे, कोई नहीं पहचानता था एक दूसरे को, वो सब कुछ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चल रहा था, स्टूडेंट की पूरी कम्युनिटी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी, और पहली बार वो लीडरशिप जो लड़कियां ले रही थी उनको सपोर्ट दिया जा रहा था। बॉटल को पीट पीट के उन्होंने मतलब चिमटा बना दिया था, उन्होंने इतना बॉटल को हाथ से पीटा था, और वो दीवार पीट रहे थे, वो ज़मीन पीट रहे थे, वो पेपर पीट रहे थे, उनको जो मिल रहा था वो पीट रहे थे, तब डफलियाँ नहीं थी उनके हाथों में। और फिर PM के आने पर आते हैं, जब वो आने वाले होते हैं तो ये बातें कही जाती कि आने वाले हैं और शायद अगर तुम लोग नहीं हटोगे तो वो हो सकता है उनकी नज़र में ये बात चली जाए और VC तलब हो। और अब तक नारे का जो पूरा सुर है जब उसको फॉलो करेंगे तो नारे अपने आप बताने लगे थे कि अंडर्स की स्टेज पर पहुंच चुका है, अब नारे लगने लगे थे कि वाइस चांसलर बाहर आओ और वाइस चांसलर माफ़ी मांगो, तेरी भी तो बेटी है, ये सब। इसी बीच एक बड़ा सा पोस्टर ऊपर से टंग चुका था जिसमें लिखा था बचेंगी बेटियां और पढ़ेंगी बेटियां, तभी तो पढ़ेंगी बेटियां, अनसेफ VHO, जिसको लेकर काफ़ी एक बवाल शुरू हो गया, जिसको ABP पूरा वो सांस्कृतिक रूप देके कि विश्वविद्यालय के गेट को बदनाम किया गया है, विश्वविद्यालय बदनाम किया गया है, किसी एक के छेड़े जाने से VHO अनसेफ कैसे हो सकता है और ये वो, जबकि लगातार हो रही छेड़खानियों की ही उपस्थिति ये सारे लोग निकल कर बाहर आते हैं, और इस तरह की तमाम दिक्कतें थी, मतलब प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते हैं। तो मैं जिस पूरे मूवमेंट को देख पाता हूँ, ये उस भाले की नोक की तरह है जो पहला छेद करता है जिसके बाद पूरा भाला पार हो जाता है दीवार के। ये मूवमेंट सिर्फ ये नोक छेद कर रहा था, ये अनरेस्ट, जिसमें तमाम सारे मुद्दे लड़कियाँ अपने लेकर आ गई थी। और वो पोस्टर जब गिरता है ऊपर से तो उसका इतना हैविली सेलिब्रेटेड स्वागत होता है लड़कियों की तरफ से कि उन्हें लगता है कि कौन है जो मतलब ये कर रहा है हमारे साथ में। तो वो पोस्टर गिरता है,
पोस्टर किसने बनवाई थी, आप लोगों ने बनवाई थी?
सब साथ के ही लोग थे, और बनवाई ऐसा नहीं था, पोस्टर्स चाहिए और पोस्टर्स चाहिए में पोस्टर्स आए। तो एक फ्लेक्स पड़ा हुआ था जो बहुत लंबा सा एनवायरनमेंट के लिए बना हुआ फ्लेक्स था, तो वो फ्लेक्स आया। तो ये हुआ कि ये कहाँ लगेगा कहाँ लगेगा, तो ये हुआ कि ये गेट से टांग देते हैं गिरा कर, क्या लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा। तो हम कलर ढूंढने में ही टाइम लग गया, तो उस पर फाइन आर्ट्स वालों ने उस पर लिखा वो बकायदा, और रवि ने शायद स्लोगन दिया था कि पढ़ेंगी बेटियां तभी तो बचेंगी बेटियां, और फाइन आर्ट्स वालों ने उसमें कलाकृति की थी। हम बस थोड़े बहुत कलर्स लाए थे और हम ही लोग का वो पूरा ग्रुप ही था। फिर ये बचाने की वो पोस्टर टंगे, उसमें लड़ाई झगड़ा होना, ये सारी चीज़ें चल रही थी लगातार। ये अफवाह उड़ना कि मालवीय जी पे कालिक पोती गई है, ये सब कुछ मतलब तमाम मेम्बर्स जब आप देखेंगे ये सारी चीज़ें मीडिया में अवेलेबल हैं जो क्लेम्स, उन चीज़ों के इतर जो बातें हैं। उसका गिरना, उसका सेलिब्रेट होना, वो भी एक बल दे रहा था। हम लोग अब इस कंडीशन में आ गए थे कि नींद पूरी आंखों में भरी हुई थी लेकिन जाने की इच्छा किसी की नहीं थी, जो भी जाता था ब्रेक लेकर लौट के आता था। फाइनली जब PM का पता लगा कि उन्होंने रास्ता बदल लिया है और वो नहीं आए हैं, ये टॉर्च लेके इनका आगे बढ़ना, वो फोटोज, मतलब वो सबसे खूबसूरत फोटो है उन दो फोटो में से, जिसमें एक में हम देखते हैं शिवांगी मनीषा और इन लोगों का पूरा ग्रुप चिल्ला रहा है, वो पुलिस को कॉल कर रहा है MMB गेट के बाहर, और दूसरी फोटो वो जिसमें पूरी की पूरी पुलिस ऐसे खड़ी है, इन्होंने बसें लगा के सामने सब कुछ घेर दिया है, और जितनी तादाद में पुलिस खड़ी है उसके 6 गुना तादाद में लड़कियाँ यहाँ से खड़ी हैं, लड़के फिर पीछे खड़े हैं और तैयार हैं कि मतलब कुछ होगा तो हम लड़ने को तैयार हैं सामने सामने। वो फोटोज़ बस के ऊपर से जब ली गई हैं तो पोस्टर पीछे टंगा हुआ है, वो कुछ खूबसूरत फोटोज ऐसी हैं जो शायद कभी दोबारा मतलब डिकेड्स में कभी आए या ना आए मैं नहीं जानता। PM गुजर जाते हैं, हम लोग श्योर हो जाते हैं कि अब, क्योंकि SP को डांट पड़ी है, मीडिया के थ्रू ये बात पता लग जाती है कि PM का रास्ता चेंज हुआ है प्रोटोकॉल हटा के, डांट पड़ी है और लाठीचार्ज निश्चित है। अजीब सा डर आता है, हम लोग पहले ये कहने जाते हैं लोगों से कि मेरे साथ के जो लोग हैं आप लोग हट जाइए लाठीचार्ज होने वाली होती है, फिर लगता है नहीं नहीं ये कहना गलत होगा। तो हम लोग बैठ के डिसाइड करते हैं, जिसमें धनंजय ये बात कहते हैं और विष्णु भैया कि यार देखो हम लोग अगर बैठेंगे तो ये क्लियर है कि लाठीचार्ज होगी, हम मार खाएंगे, हम मार खाएंगे तो हम उठेंगे तो नहीं यहाँ से। हम ये तीनों तय करते हैं कि ये हमें चुनना होगा कि अगर हम मार खाने वहाँ पर बैठेंगे तो वहाँ से नहीं उठेंगे, फिर वो जितना भी मारें हम भागेंगे नहीं, हम तीन ही बैठे रहें, हम पाँच ही बैठे रहें हम लेकिन वहाँ बैठे रहेंगे, या फिर हम ये तय करते कि हम रेस्क्यू में जाएंगे, क्योंकि चोट लगने के बाद भी एक पूरा मूवमेंट है और अगर मेन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया तो सब कुछ वहीं का वहीं ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कोई दिशा नहीं बचेगी। इससे पहले भी पर्चा बनाना मतलब कुछ नहीं होता था, हम और अमरदीप जाके पर्चा डिमांड लिख के उसको छपवा के ला के बांटते हैं लोगों में, रात में भी डिमांड डिसाइड हो रही होती हैं तो ये सब। तो फाइनली जब हम ये डिसाइड करते हैं तो हम विष्णु धनंजय और पंकज हम चारों लोग लाठीचार्ज से 80 मीटर दूर टंडन जी की चाय दुकान के पास खड़े रहते हैं, उसका अपना अलग हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है टंडन जी की चाय की दुकान का, वहाँ पर खड़े होते हैं और वहाँ से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हम लोग बताते हैं कि यार 15 मिनट में होने वाली लाठीचार्ज, उस समय प्रियेश मिलने आता है, प्रियेश से कहते हैं रुको जी रेस्क्यू टीम में कि वहाँ जाओगे क्या तय कर रहे हो। तो ये लोग हमसे कहते हैं मतलब प्रियेश का जो कहना होता है कि क्या भैया हम लोग साथ बैठ के लाठी खाया जाएगा, लड़कियों के मार ही ना खाना है साथ बैठ के खाया जाएगा, वो ये कह के जाता है। और हम लोग यहाँ पर खड़े होते हैं इस डिसीजन के साथ कि अब लाठी खाने तो जा ही रहे हैं सब, मार खाने के बाद क्या करना है। और फिर लाठी चार्ज की खबर आती है अंदर से कि अंदर लाठी चार्ज हो गई है, और वहाँ से भाग के बहुत लोग गेट पर आते हैं। गेट पे ये बात आती है पर गेट से लोग भाग नहीं रहे होते हैं, वो तैयार होते हैं। पुलिस लाठी चार्ज करती है, खदेड़ती है, हॉस्टल के अंदर घुस के मारती है। खदेड़ने तक का हम देखते हैं लाठी चार्ज का, अंदर की रिकॉर्डिंग जो लोग कर रहे थे वो अंदर थे, हम बाहर थे। हमारे पास फ़ोन आता है कि इसे चोट लग गई है, गौरव को मनीष का सर फूटा है, पहुँचो। गाड़ियाँ लेके जब जा रहे हैं तो बाकायदा पत्थर चल रहे हैं पुलिस की तरफ से भी और उधर से भी, मतलब PSC पेट्रोल पम्प फेंक रही है, ऐसी ऐसी स्थिति है। और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बच्चे फेंक रहे हैं। फिर ये दोनों तरफ से शुरू हो जाता है। उस बीच में ये भी होता है, कह रहे हैं यार रुको, हम यहीं के स्टूडेंट हैं, किसी को चोट लगी लेने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स रुकते हैं, पुलिस इधर चढ़ती है उनको लेकर आना, फिर सबको रेस्क्यू करना। गौरव का हाथ टूटता है, अविनाश को चोट लगती है, मनीष सबको उठा उठा के लाके फिर हम लोग 80 घाट आते हैं। फिर सबको फ़ोन करना शुरू होता है कौन कहाँ पर है। तो कोई शौचालय के ऊपर सोया हुआ है, कोई मधुबन में मच्छरों में सोया हुआ है, कोई धीमे आवाज़ में बात कर रहा है कि पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। ये होता है कि कहाँ लेकर जाया जाए। नवरात की रात होती है तो हमको ये आइडिया आता है कि दुर्गा कुंड ही चलते हैं, नवरात्र जागरण हो रहा होगा और उसे सेफ कुछ नहीं है इस समय। वहाँ पहुँचते हैं, मतलब पुलिस की पूरी वो चल रही है गश्त कि वो किसी को देख रहे हैं वो मारने लग रहे हैं, और ये गश्त चलती जा रही है। फिर उसमें उठा के फिर सबको ला के 80 जाना, फिर कुछ और लोगों का सपोर्ट आता है, लोग वहाँ पहुँचते हैं, कुछ खाने पीने की व्यवस्था होती है। धनंजय भी रात, मतलब धनंजय कुछ देर के लिए जाते हैं कि अगर कुछ होगा तो हम आ जाएंगे। धनंजय फिर घर पहुँचते नहीं कि उनको लौट कर आना पड़ता है वापस। हम विष्णु भैया और पंकज, हम तीन लोग बाइक, दो बाइकों से मतलब लोगों को ढो ढो के पहुँचाए जा रहे हैं। सबका क्रॉस चेक किया जा रहा है, किसी को चोट लगी है। अलग अलग अफवाहें आ रही हैं, अलग अलग खबरें आ रही हैं, इस बीच मैनेज करना। फिर उसके बाद का एक पूरा दौर चलता है जिसमें
रेपरकशंस क्या क्या हुए आप पे पर्सनली, टारगेटिंग एंड स्पेसिफिकली
टारगेटिंग।
एक तो FIR में आपका नाम था शायद,
हाँ सेकेंड डे पे ही, वो तो मैंने बताया जिसमें वो खुलेआम अमर उजाला छापता है कि क्यों हुआ ये, मतलब पूरा आंदोलन और क्यों ये दंगा हुआ, क्यों उपजनी हुई, इसका जवाब दिवाकर विकास और ममता देंगे। ममता इस मूवन एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद बाकी सारे लोग धनंजय वगैरह को भी CBI ने कॉल किया, उनके पास चिट्ठियाँ आई, वो अपना गए। मेरे यूनिवर्सिटी मतलब डिपार्टमेंट का पुलिस का जाना, और रिपरकशन पर्टिकुलर इस मूवमेंट को लेकर एक बार में नहीं हुआ। थ्रू आउट द फेस तो मैं बार बार, मतलब एकेडमिक रिपरकशन में 3 बार PhD का जाना, फाइनेंशियली भी कुछ बसता नहीं है एंड में आपके पास, जब आप इन चीज़ों से जुड़ते हो तो वो काफ़ी एग्जॉशन होता है। पुलिस का बार बार आपको शक के निगाह से देखना, मतलब हम एक छोटी सी मीटिंग अप कर रहे होते हैं कहीं बैठ के, अगर हम जैसे वाइफर्स के तहत रोहित में मतलब एक गोष्ठी रखे हुए थे, उसमें इंटेलिजेंस LIU लोकल पहुंच जाती है, अगर कॉल चली जाए तो नाम बकायदा फेसबुक से निकल कर रखे हुए हैं प्रॉक्टर ऑफिस में सजा सजा के। एक दिन ऐसे बहस हो गई छोटे से इशू को लेकर वार्डन सिक्योरिटी गार्ड से, सिक्योरिटी गार्ड ने जैदी SO को बुलाया। वो जैदी ये जानते हुए कि हम हाथ नहीं छोड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, उस बात को जान चुका था उसने। मेरे पूरी खुली बदतमीजी की पब्लिक में, मैं वाइफ को दिखाने गया हुआ था, कुर्सी से ढकेलने से लेकर गालियाँ देना, खुलेआम माँ बहन की सारी गालियाँ वो दे रहा था। और ना हम उसमें गाली दे सकते हैं उसको, ना मार सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को चुनते हो बहुत मुश्किल से, वो सब कुछ होता है, एक नॉर्मल फिनोमिना सा हो गया है अब लाइफ में। वो फैमिली से मतलब सारे रिश्तेदारों का छूट जाना, वो सब तो कॉमन बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हो गई हैं। घर छूट ही जाता है, सब कुछ छूट ही जाता है, अब एक फॉर्मेलिटी सा लगता है घर जाना और यहाँ काम सा लगता है, प्लस साथ में वो पूरे ऑब्लिगेशंस। अब अगर कहीं चींटी मर जाए तो लोग आपको चौराहे पे रोककर पूछ सकते हैं कि वो चींटी मरी तुम उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो, तुम इस इशू पे क्यों नहीं बोल रहे हो, और अब वो जो लड़की को छेड़ा गया उस पर नहीं निकलोगे, तो एक तो आप सोशली लायबल एक फिगर हो जाते हो, मतलब उस मूर्ति की तरह जिसको चौराहे पे चलता कोई भी पत्थर फेंक के मार देगा कि तुम्हें इस पर बोलना है बोल देना, हम ये मुद्दा फेंक के तुमको देखे जा रहे हैं।
When you look back at the movement now, like the entire time specifically this, मतलब जो मतलब आपने जो कहा कि सिर्फ ये unrest था movement, तो आगे और पीछे भी रहा, that's true. It is an event in that entire stretch.
हाँ.
So when you look back, what do you think was the weakness or could we have done differently during this time? Could have been done better?
I don't know, मतलब कि बेटर क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे लिए तो वही बेटर था कि वो बाउंड्री कूद के आ रही थी और वो दरवाजे मतलब उन्होंने गेट तोड़ दिए थे,
वो आपके लिए अचीवमेंट थे इस मोमेंट।
एग्जैक्टली वो अचीवमेंट थे, मतलब आज भी 10 बजे हम मुस्कुराते हैं वहां से पास होते हैं जब लड़कियों को अंदर घुसते देखते हैं, हम जानते हैं कि ना वो गेट हमें जानता है ना वो लड़कियां हमें जानती हैं, जस्ट बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, उस पूरे मूवमेंट का, उस पूरे डिस्कोर्स का जिसके आज भी हम लोग हिस्सा हैं, मुस्कुराते हैं आज भी, मतलब हमें लगता है कि वो कर्मचारी जिस दिन स्टेबल हो जाएंगे उन 54 के बाद भी और तमाम कर्मचारी होंगे, बट एक फीलिंग तो रहती है कि आप हमेशा नहीं हारते हो, मतलब यू डू सक्सीड एट टाइम्स दो रेयरली, और अब कॉन्फिडेंस है, अब हम ये जानते हैं कि हम में से कोई रहे या ना रहे, लेकिन वो जो 10 बजे का टाइम दिया गया है ना उसको जिस दिन ये 9:45 करेंगे उस दिन वो लड़कियां खुद लड़ लेंगी, एंड वी आर अश्योर्ड ऑफ इट। और इसी तरह मतलब तमाम चीज़ों में लोगों का आगे बढ़कर आना, हमारे खिलाफ ही आना भी अच्छा है, वो आ रहे हैं आगे, वो खिलाफ बोल रहे हैं, मतलब एकता और भूमिका दो लड़कियां थी एबीपी से मूवमेंट के स्टार्ट में जो लीडरशिप को लेके आपस में क्लैश कर रही थी, इट वाज गुड, मतलब दो लड़कियां लीडरशिप को लेके लड़ रही हैं, दो वो दोनों का नहीं है बट वो लीडरशिप को लेकर लड़ रही हैं कि वो लीड करेंगी, और गली में तो वो सीड आउट नहीं कर रही हैं किसी और नेता को, वो खुद में लड़ रही हैं, तो जैसे ही इस मूवमेंट में जो लोग लड़े हैं शायद ही अपनी अपनी जगह पर कहीं ना कहीं लीडरशिप को लेकर लड़ेंगे, ठीक है, दैट्स हाउ आई सी द लीडर्स आर प्रोड्यूस्ड, मतलब दे फाइट, वो जमीन पर लड़े उन्हें एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं तो कुछ चेंजेस ला रहा होगा, मेरे अंदर लाया है, उनके अंदर लाएगा, मैं वो लड़का जो सोचता था कि मतलब 2 दिन के धरने के बाद गांधी जी की तरह सब कुछ बदल जाएगा, आज मैं इस बात पर एग्री करता हूँ कि हो सकता है कि 7 महीना बैठने के बाद भी आपके हाथ में कुछ ना आए, बट आप उस एथिक्स के साथ स्टैंड करते हो कि आप सही के लिए लड़ रहे थे और आप उसके लिए लड़ते रहो।
तो व्हाट पर्सनली चेंज फॉर यू व्हिच इज व्हाट यू आर सेइंग, मतलब और क्या पर्सनली क्या चेंज किया इस इवेंट और इसमें?
बहुत मुश्किल नहीं लगती जिंदगी अब, बहुत बड़ी नहीं लगती, बहुत लाज नहीं लगती, बहुत खूबसूरत भी नहीं लगती अब ये दुनिया, लेकिन अब ये लगता है, मतलब एक जो कॉन्फिडेंस आता है स्ट्रगल का जो कॉन्फिडेंस होता है वो अलग होता है, मतलब वो कहना कि संघर्ष वो तो चलता ही रहेगा, मतलब वो बचपन से लेके मैं हमेशा कहता हूँ कि वो लक्ष्मीबाई के समय भी चल रहा था और वो 2050 में भी चलता रहेगा, संघर्ष वो जो स्ट्रगल का पर्टिकुलर टर्म होता है लाइफ की हर एस्पेक्ट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे देता है कि आप उससे कोप अप कर सकते हो, और वो कॉन्फिडेंस मुझे लगता है पर्याप्त है, अब वो चाहत नहीं है कि एक आईएएस बन जाना है, अब वो चाहत नहीं है कि एक जॉब चाहिए जिसमें पावर हो, अब लगता है कि लाइफ ऐसे भी अच्छी चल रही है लोगों के साथ मिलकर भी, और राह चलते जिसका कुछ हो सकता है किया, एक कर्ज जो है सोसाइटी का, जो एक लाइबिलिटी आपको मिलती है सोसाइटी की तरफ से एक पार्ट होने के नाते, उसको पूरा करते हुए लाइफ चलती है और चली जा रही है, और कुछ बेहतर, मार्गरेट मीड वाला वो कोट हमेशा बहुत इंस्पायर करता है कि नेवर डाउट दैट अ ग्रुप ऑफ सिटीजन कैन चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इनडीड दोस आर द पीपल दैट हैव एवर डिड इट, तो ठीक है, क्या पता वो ग्रुप, वो भाले की नोक कभी हम हों या फिर शायद हम उस कड़ी के कहीं ना कहीं वो एक हिस्सा बन सकें जो उस भाले की नोक को तैयार करे, आज से 20 साल बाद ही सही, अगर चीज़ें बदलें तो बेहतर ही होगा, सब सारी लड़ाई तो बदलाव की है।
आगे का क्या प्लान है करियर एंड लाइफ?
काफ़ी कंफ्यूजिंग है, कई बार लगता है पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को लेकर चलना चाहिए क्योंकि अब वो फंडामेंटल ड्यूटी बन गई है, अगर आप राजनीति में नहीं उतरेंगे तो जो स्थिति है वो भयावह है क्योंकि फिर जिस एकेडमिक्स में जाना है उसको भी राजनीति ही गाइड कर रही है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट से लेके एक साइंटिस्ट के वर्क को लेकर, उसी बीच रिसर्च जब करने लगते हैं तो जिस पे काम कर रहे हैं टिश्यू इंजीनियरिंग पे, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का भी एक सपना है कि वो प्रोडक्ट डेवलप हो जाए तो वो इकोनॉमिकली एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, बहुत काम आएगा, तो अभी मतलब कोई शर्म नहीं है कहने में कि 33 साल की एज में भी मैं अभी सोच ही रहा हूँ कि एकेडमिक्स के साथ कंटिन्यू करूँगा, पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँगा या शायद फिर कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब एक अच्छी सिक्योर करके सब कुछ छोड़ के घर की लाइफ जीने लगूँगा, पर तीसरा वाला ऑप्शन शायद बहुत मुश्किल ही लगता है कि वो हो पाए, ये इतना इंटरवोवन स्ट्रक्चर है कि ये आपको निकलने नहीं देता और एक्टिविज्म एक्सप्लॉइट कर लेता है, वो कुछ छोड़ता नहीं आपके अंदर बचा हुआ, वो हमेशा वो गन्ने की तरह आपको पेरता रहेगा, देखते हैं अगर कुछ बचता है तो फिर कुछ और भी देखा जाएगा, लेकिन अभी बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है लाइफ, विल सी।
ठीक थैंक यू सो मच दिवाकर.
थैंक यू आयरी.